Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो आषाढ़ महीने के शुद्ध चतुर्दशी की शाम को हम यहाँ पर 2 जुलाई को बैठेंगे, सोमवार के दिन.
हरे कृष्ण बोले, हरे कृष्ण.
हाँ, चतुर्दशी का पूर्णिमा है.
जब पूर्णिमा? अच्छा, वो
कैसे? 29 तारीख को एकादशी यहाँ की,
यहाँ की
30 तारीख को द्वादशी, 1 तारीख को त्रयोदशी, 2 तारीख को चतुर्दशी, और कल पूर्णिमा चतुर्थी. आप नहीं सुने त्रयोदशी. तो आज शाम का हमारा जो कथा का विषय है वो नित्यानंद प्रभु और जगन महाप्रभु का पंडरपुर को दिया हुआ भेंट. उनकी यहाँ पर जो उन्होंने भेंट दिया उसके पर हम चर्चा करेंगे. आप सब जानते हैं संक्षेप में, नित्यानंद प्रभु बलराम जी के, तो स्वयं बलराम जी हैं, बलराम होइलो पिताए. तो उनका जन्म जो है वो एक चक्र धाम में हुआ था और बचपन में वो बहुत सुंदर सुंदर लीला करते थे, रामायण की और महाभारत की और नरसिंह अवतार की, ध्रुव लीला, ऐसे हर एक लीला करते थे और बहुत सुंदर नाटक नाट्य करते थे. और उस नाट्य में कभी कभी लोग बेहोश हो जाते थे. जैसे जब लक्ष्मण जी रामायण का नाटक किया गया तो लक्ष्मण जी का रोल नित्यानंद प्रभु स्वयं कर रहे थे. तो नाटक में जब लक्ष्मण जी को इंद्रजीत का शक्ति बाण लगता है और लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी के आवेश में स्वयं बेहोश हो गए और नाट्य वहां बंद हो गया. हाँ, किसी को पता नहीं चला कि आगे क्या करना है, क्योंकि आगे का डायरेक्शन दिया नहीं था. तो वो बेहोश हो गए और कई देर तक बेहोश रहे. फिर उसके कान में हरिनाम संकीर्तन किया गया, फिर वो होश में आ गए, फिर अगला नाटक चालू हो गया. इतना सुंदर नाटक करते थे कि भाव विभोर होकर, ब्रह्ममान होकर, एक रूप होकर नाटक करते थे. तो हड़ाई पंडित उनके पिताजी का नाम है और पद्मावती उनके माता जी का नाम है. एक चक्र धाम जो है ये कम से कम 8-9 घंटा दूर है मायापुर से. वहां पर पांडव भी आए थे वनवास में और उन्होंने बकासुर नाम के राक्षस का वध किया था. ये बकासुर वो नहीं जो वृंदावन वाला बकासुर, बकासुर नहीं, ये राक्षस बकासुर था. वो पंछी बकासुर था, बगले के रूप में था. ये बकासुर राक्षस के रूप में था. उसके 15 दिन में एक बार बैलगाड़ी भर के खाना भेजते थे गाँव के लोग. तो एक दिन वहां पर भीम से गए और उन्होंने बकासुर को मार दिया और वो बैलगाड़ी भर के खाना जो है वो पहले खा लिया. उसके बाद बकासुर का वध कर लिया. तो वो गांव है एक चक्र धाम. एक चक्र में जमुना जी का प्रकट्य है. जमुना जी जो है वो एक चक्र में प्रकट हुई है. जैसे यहाँ पर पद्मावती नदी के रूप में प्रकट हुई है, वहां पर वो एक चक्र में भी प्रकट हुई है. क्योंकि तो मायापुर नवद्वीप धाम जो है उसमें पूरा वृंदावन धाम प्रकट है. तो ऐसे एक चक्र में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ और उन्हें बहुत सुंदर तरीके से अपना बाल्य काल वहां पर बिताया. जब समय आया तो उनके मन में विचार आया कि चैतन्य महाप्रभु मेरे बड़े भाई श्री कृष्ण भगवान जो कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में आने हैं, उनको मिलने का समय भी आ गया है. तो यहां से निकलने का कुछ बहाना करना चाहिए ना. उतना कुछ बहाना नहीं होगा तो निकले ही कैसे यहां से. तो खड़ाई पंडित और पद्मावती जी नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम करते थे कि एक भी मिनट उनके नजर से वो ओझल नहीं होते. तो नित्यानंद प्रभु ने फिर लीला रचाई. एक सन्यासी आया एक चक्र धाम में और सन्यासी जब घर में आता है तो गृहस्थ लोग उत्सव मनाते हैं कि हमारे घर में सन्यासी आए. उसकी सेवा करते हैं, पाल पूजा करते हैं, उनको भोजन करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं. तो वैसे बड़े उत्साह से, आनंद से उन्होंने इस सन्यासी का स्वागत किया, उसकी सेवा की और आगे पूछा कि हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं. तो सन्यासी ने दान में बल बताया कि हमको दान में आपका बेटा चाहिए. जैसे उन्होंने कहा कि दान में आपका बेटा चाहिए तो हड़ाई पंडित पद्मावत दोनों बेहोश हो गए, वहीं पर गिर गए. बहुत देर तक मूर्छित रहे. जब जग गए तो उनको आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे. कि उनको जिनको एक क्षण के लिए नित्यानंद प्रभु नजर से दूर हो गए तो उनको असह्य होता था, वो नित्यानंद प्रभु परमानेंटली चले जाएंगे तो भी असह्य हो रहा था। और घर में आए हुए साधु को दान नकार देना, उसकी इच्छा न पूर्ण करना, ये अपराध है, इसका भी ज्ञान था उनको, बड़ी दुविधा में आ गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने अपने माता पिता को समझाया कि मुझे जाना होगा क्योंकि इन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट की है, तो बड़े प्रेम से उनके बेटे खड़े हो गए जाके, फिर बड़े ही दर्द भरे हृदय में हृदय से उन्होंने नित्यानंद प्रभु को विदा किया। और नित्यानंद प्रभु 20 साल तक उस सन्यासी के साथ में भारत भर घूमे, बलराम जी के रूप में भी उन्होंने महाभारत के युद्ध के पहले एक निर्णय लेकर वो तीर्थ यात्रा में चले गए, भारत भर के तीर्थ यात्रा में उन्होंने दर्शन किया। वैसे नित्यानंद प्रभु के रूप में भी उन्होंने सन्यासी के सेवक के रूप में पूरे भारत वर्ष में यात्रा किया, और फिर वो वृंदावन में आए, और वृंदावन के बाद में फिर वो नवद्वीप धाम गए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। उसके पहले की ये बात है, 1509 या उसके पहले की बात, तो उसमें नित्यानंद प्रभु पंढरपुर में आए, और पंढरपुर में जब वो आए उसी समय एक ब्राह्मण के निमंत्रण के कारण लक्ष्मीपति तीर्थ नाम के बड़े आचार्य थे जो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आते हैं। अगर आप प्रभुपाद जी की पुरानी गीता निकाल के पढ़ेंगे ना, उसमें 33 आचार्यों का पूरा वर्णन दिया है लाइन से, तो मध्वाचार्य के बाद बहुत लोगों का उसमें वासुदेव तीर्थ है, राजेंद्र तीर्थ है, ऐसे बहुत सारे आचार्य आते हैं। उसमें मध्वाचार्य के 3-4 आचार्यों के बाद में लक्ष्मीपति तीर्थ आचार्य का नाम आता है। ये बड़े महान भक्त थे, हमेशा भगवत भावना में ब्रह्मांड रहते थे, भाव विभोर रहा करते, अपने बड़े लंबे चौड़े शिष्य और वृंद के साथ में वो उस ब्राह्मण के निमंत्रण के अनुसार पंढरपुर में आते, और ब्राह्मण के घर में उनको भोजन खिलाते खिलाते हैं, उनकी सेवा हो जाती है। तो उस ब्राह्मण के घर में उनको बड़ा अनोखा अनुभव आता है, कहता है कुछ अद्भुत मुझे अनुभव हो रहा है, यहाँ पर कोई महान महान भक्त, महान महान व्यक्तिमत्व जो है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पर मौजूद है। भोजन करने के बाद वो सो जाते हैं, अगले दिन उठते हैं तो एकांत में बैठकर उनको बलराम जी याद आते हैं, अचानक मन में बलराम जी की प्रेरणा हो, और बलराम जी को रो रो कर वो पुकारते हैं अकेले बैठकर, और रो रो कर पुकारते मेरा उद्धार करो, मेरी रक्षा करो, मुझे भक्ति भाव में आपके चरणों में आश्रय दो। और इस भाव में जब वो भाव में चले जाते हैं तो उनको उसमें नींद आ जाती है, पहले मूर्छित हो जाते हैं फिर उनको नींद आ जाती है, तो वो नींद में उनको बलराम जी दर्शन देते हैं, और बलराम जी के दर्शन होते ही वो चरणों में गिर जाते हैं स्वप्न में, और रोते हैं स्वप्न में, रोते हैं बहुत, बलराम जी मैं पतित हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मेरी आप रक्षा कीजिए, मुझे आपके चरणों में आश्रय दीजिए। तो बलराम जी उनको आदेश देते हैं, बलराम जी उनको आदेश देते हैं कि एक ब्राह्मण का पुत्र जो है वो आपके लिए आपके पास आएगा, उसको आपको दीक्षा देना। तो अगले दिन वो जगते हैं रात को सोते हुए, स्वप्न की बात उठते हैं और स्वप्न पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि स्वप्न का मतलब क्या है, और स्वप्न की याद करके महाविर हो जाते हैं, आंखों से आंसू आते, बलराम जी के दर्शन को याद करते हैं, किसी को बोलते नहीं। और अचानक नित्यानंद प्रभु बालक के रूप में उनके सामने आ गए, 20 साल की बड़ी उम्र, 20 साल तो भ्रमण किया था, उसके पहले कुछ साल तो रहे थे बालक, मतलब बालक नहीं थे वो, करीब करीब 25-30 साल की उम्र के थे। तो नित्यानंद प्रभु को देखते ही उनको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के शरीर में और चेहरे पर इतना बड़ा तेज होता है कि वो समझ जाते हैं कि ये इतना तेज मनुष्य में नहीं हो सकता है, ये मनुष्य नहीं है, ये दिव्य वस्तु है, और उनके चरणों में गिरने का दिल करता है। उतने में वो नित्यानंद प्रभु उनको कहते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य पद स्वीकार कर लीजिए। स्वप्न में एक बताने को बाद में भूल गया आपको, स्वप्न में बलराम जी लक्ष्मीपति तीर्थ महाराज को जो मंत्र देना है दीक्षा में, वो मंत्र भी उनको कान में बोल देते, ये मंत्र देकर आपको दीक्षा देंगे। तो उनका आदेश के अनुसार उनको गोद में बिठाकर उनके दाहिने कान में लक्ष्मीपति तीर्थ महाराज वो मंत्र बोल लेते हैं जो बलराम जी ने स्वप्न में बताया। लेकिन निकान लोगों को गोद में लेते ही इनके शरीर में कंपन शुरू होता है, आंखों से अश्रु बहते हैं और भावना विमूर्ता से ही उनको वो दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा देने के पश्चात तुरंत निकान लोग चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो उनके विनय में लक्ष्मीपति जी व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर अपने शिष्यों से बात करना वगैरह बंद कर देते हैं, एकांत में चले जाते हैं, केवल रोते रहते हैं, उनके शरीर में कंपन होता है, अष्ट विकार का प्रकट होता है। तो उसमें भी उनको एक बार अष्ट विकार में मूर्छा आ जाती और कुछ देर मूर्छा में नींद आ जाती, तो उस नींद में वापस स्वप्न आ जाए। उस स्वप्न में नित्यानंद प्रभु उनको दर्शन देते हैं। नित्यानंद प्रभु को देखकर ये स्वप्न में जाकर गले मिलते हैं, जोरदार प्रेम से आलिंगन देते हैं और उस स्वप्न में नित्यानंद प्रभु उनकी आंखों के सामने बलराम बन जाकर दर्शन देते हैं। तब लक्ष्मीपति तीर्थ कहते हैं, हे भगवान मुझे आप फंसा रहे हैं, मेरे साथ छल कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका इस करने का? मैं तो पति तीन ही हूं, आपके गुरु बनने का योग्य नहीं हूं, फिर आपने मुझे फंसाकर मुझसे दीक्षा ले लिया। तो ये उनका प्रेम का अति उत्कट भावना का प्रदर्शन है, जैसे भगवान पर इल्जाम नहीं लगा रहे, अपनी पति अवस्था को मानते हुए समझते हुए वो भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि जो भी आपको मैंने दर्शन दिया है आपको गुप्त रखना है, किसी को बोलना नहीं। फिर उसके बाद में जब स्वप्न से जाग जाते हैं तो एकदम एकांत में चले जाते, उनकी एकदम अवस्था भिन्न हो जाती है, एकदम भिन्न हो जाती है। तो किसी को मिलते नहीं, बात नहीं करते, शिष्य लोग परेशान हो जाते हैं गुरु मान लो क्या हो गए, और कुछ ही समय में शरीर छोड़कर भगवत धाम चले जाते। लक्ष्मीपति तीर्थ की कथा है। नित्यानंद प्रभु इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने पंढरपुर में दीक्षा लिया है। उसके बाद में नित्यानंद प्रभु के गुरु भाई यानी कि लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य एक महान व्यक्ति गोलोक धाम के कल्प वृक्ष के अवतार कौन है मानना? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी ये गोलोक धाम के कल्प वृक्ष के अवतार है और उन्होंने सबसे पहली बार पूरे विश्व में राधा रानी का तत्व का प्रचार किया। उनके आने तक केवल विष्णु भगवान की अकेले पूजा की जाती थी, जब उनका आविर्भाव हुआ तब राधा रानी का तत्व जो है वो प्रकाशित हुआ और राधा रानी का विग्रह भी प्रकट हुआ और वो कृष्ण के बारे में रखकर उनकी सेवा में। तो प्रतीचि नाम का एक तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर नित्यानंद प्रभु की मुलाकात माधवेंद्रपुरी से होती और उसके बाद में फिर नित्यानंद प्रभु वहां से निकल कर वृंदावन में आते हैं। वहां पर कुछ निवास करके नित्यानंद वट यानी श्रृंगार वट, यमुना किनारे एक बहुत बढ़िया स्थान है श्रृंगार वट, यहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार भगवान कृष्ण किया करते हैं। उसके वट के नीचे नित्यानंद प्रभु रहे और भगवान के विरह में वहां पर अश्रु बहा करते थे, तो उनके अश्रु से वहां पर एक हवन बना हुआ था, अभी भी वो वहां पर है, उसमें भी अश्रु नहीं है, खाली रेती है, लेकिन वहां पर बैठकर नित्यानंद प्रभु श्रृंगार वट के नीचे अश्रु बहा करते और वहां से फिर यथायोग के समय पर जब जगन महाप्रभु जवान हो गए, बाल लीला समाप्त हो गई, तो नित्यानंद प्रभु चले गए। इसका मतलब नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के गुरु भाई हैं, माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी हैं, ईश्वरपुरी के शिष्य है तरह। तो नित्यानंद प्रभु कितने सिंगल हुए वैसे परंपरा चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से ये कथा हुई नित्यानंद प्रभु की दीक्षा की जो पंढरपुर क्षेत्र में संपन्न हुई, इसलिए पंढरपुर क्षेत्र को गौड़ी संप्रदाय में आज भी बड़ी मान्यता है। अभी आगे की कथा है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, अवतार लिया मायापुर अंतर्द्वीप में नीम के पेड़ के नीचे, माता सची माता और पिता जगन्नाथ मिश्रा के घर में जन्म लिया। उनका नाम निमय रखा गया क्योंकि उनके पहले 9 कन्याएं होकर उनका देहांत हो चुका था। तो यमराज को कड़वा अच्छा लगता नहीं है, इसलिए यमराज के यमराज को दूर रखने के लिए उन्होंने निमाई का नाम निमाई रखा। ये निमाई नाम रखने का एक कारण है कि सब मृत्यु ना हो जाए, चाहे यमराज उसको कड़वा लगे तो यमराज उसको लेंगे नहीं, ये कारण था निमाई रखने का नाम। दूसरा कारण था जो सच्ची माता और सॉरी मालिनी यानी शिवाज पंडित की पत्नी उन्होंने रखा, क्योंकि वो नीम पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए नाम रखा। नीलांबर चक्रवर्ती ने उनका नाम विश्वंबर रखा, उनके माता के पिता ने नाना जी ने उनका नाम विश्वंबर रखा, क्योंकि वो आगे जाकर विश्व के रक्षा करने वाले। पड़ोस पड़ोस के जो स्त्रियां थी उन्होंने उनका नाम गौरांग सुंदर रखा, क्योंकि वो वर्ण से बड़े स्वर्ण थे और गौर वर्ण थे। इस तरह से अपना बहुत लंबा बचपन निमाई ने बिताया, उसकी कथा हम यहां पर नहीं करेंगे, उनकी बाल लीलाओं का। लेकिन एक समय ऐसा आया कि निमाई का जन्म होने के पहले 9 कन्या हुई थी, उसके कन्याओं के बाद में एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था विश्वरूप। वो भगवान बलराम जी का अंश रूप था और बड़ा विश्वरूप जो वर्णन जो किया गया है वो इतने सुंदर थे, नम्र स्वभाव के थे, सारे दिव्य गुण उनके अंदर थे। और अद्वैत आचार्य शांतिपुर को छोड़कर, जो उनका मूल घर है, छोड़कर श्रीवास आंगन के बाजू में रहने को आए, अद्वैत भवन अभी भी वो वहां पर उपस्थित है। और वहां पर अद्वैत भवन में अद्वैत आचार्य हर रोज भागवत पढ़ते थे, और वो भागवत पढ़ने के लिए सुनने के लिए रोज विश्वरूप दिन से दिन भर भले सुबह जाकर वहां बैठते थे, और निमाई जाकर बार बार सच्ची माता के आदेश के अनुसार उनको भोजन के लिए बुलाते थे, तभी वो आते नहीं थे, देर से आते थे भोजन करने के लिए, और तुरंत भोजन करके वापस चले जाते थे, रात तक लेट तक भागवत सुनते थे। ये उनकी भागवत की आसक्ति, दिन भर ब्रह्मांड होकर वही रहना, ना कोई बचपन का खेल है ना कोई खेल कूद है, ये देखकर चिंता हुई उनकी माता के साथ। उन्होंने उनका विवाह के बारे में सोचा कि उनका विवाह कर देना चाहिए, और जैसे ही विवाह की चर्चा विश्वरूप के कान पर पड़ी तुरंत विश्वरूप घर छोड़ के चले, उसी दिन उसी क्षण संन्यास ग्रहण किया उन्होंने। उनका नाम पड़ा शंकर अरण्य स्वामी, और तब से वो कहां चले गए किसी को पता नहीं। तो एक समय ऐसा आया चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को बताया कि मैं जाऊंगा अभी बड़े भैया को ढूंढने के लिए, पता नहीं कहां चले। संन्यास की बात हुआ, एक विवाह हुआ, उनकी पत्नी को सर्पदंश हुआ, जब वो गया में गए थे तभी सर्पदंश हुआ तो लक्ष्मी प्रिया का देहांत हो गया, फिर विष्णु प्रिया के साथ विवाह हो गया, फिर 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेकर वो जगन्नाथपुरी चले गए, और वहां से वो अपने भाई को खोजने का बहाना बुलाकर दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए। और दक्षिण भारत की यात्रा में जब चले गए तो उनका मूल उद्देश्य था हरिनाम का प्रचार करना, लोगों का उद्धार करना, लेकिन बाह्य उद्देश्य था कि अपने भाई को ढूंढना, तो ये बहाना बना के वो निकल गए। तो कहते हैं कि 1509 साल में विश्वरूप आए पंडरपुर में स्वयं, और यहां पर उनको अपने जीवन का उद्देश्य साक्षात्कार हो, और यहीं से वो शरीर छोड़कर भगवत धाम चले गए। उनकी कोई समाधि नहीं है, का कारण यह है कि जैसे उन्होंने अंतर्धान हुए वो नित्यानंद के शरीर में विलीन हो गए, मर्ज इन टू बॉडी ऑफ नित्यानंद, इसलिए कोई समाधि नहीं है। कुछ लोग की समाधि है ऐसे बोलते हैं, कुछ समाधि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन यहां पर विश्वरूप अपना सारा भ्रमण करने करते सन्यासी बनकर आए, और उनको साक्षात्कार यहां पर अंतिम यहां पर हुआ, और यहीं पर वो अंतर्धान हुए। तो ये उनकी कथा है, लेकिन ढूंढते ढूंढते 1514 साल में चैतन्य महाप्रभु यहां पर पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु यहां पर पहुंचे तो सबसे पहले जहां पर हमारा मंदिर है ना राधा पंडित नाथ का, उस दिशा में उपलब्ध थे, और वहां पर जैसे ही वो आए रात को सोए और सुबह भली भोर भोर समय पर उठे, और अपने अजानों बाग जो उठने तक लंबे उनके दो हाथ हैं उनको हवा में उठाकर भाव भोर होकर वो गाते गाते चले, जब तब सभी पक्षी कुंजरम कर रहे थे और सब सब औरतें जन जन उठकर भगवान का नाम मुख में लेकर भजन कीर्तन करते हुए अपने घर में झाड़ू लगाना हाँ फूलों का रंगोली निकालना, सम्मार्जन करना, इस प्रकार का कार्य कर रहे थे। उस सुंदर सुबह की बेला के समय चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठाकर कीर्तन करते हुए चंद्रभागा नदी में आए। उन्होंने चंद्रभागा नदी में भाव विभोर अवस्था में, अति उत्कट अवस्था में स्नान किया और फिर स्नान करने के पश्चात वो विठ्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए अंदर चले गए और सब लोग उस हाथ में उनके पीछे लोग भागने लगे। जिस तरह से कीर्तन करते करते महाप्रभु चैतन्य आगे बढ़े, उन्होंने विठ्ठल मंदिर के मंडप में प्रवेश किया और वहां पर जाते ही उन्होंने विठ्ठल भगवान का चरणों का दर्शन किया और विठ्ठल भगवान को आलिंगन दिया। मैं आपको कल बताया था कि एक समय ऐसा था 1873 के पहले की बात है, तभी सारे भाविक जो है वो विठ्ठल भगवान को आलिंगन दिया करते। आजकल चरण चिन्ह उनके चरण जो है अवेलेबल है, क्योंकि कुछ दो तीन व्यक्ति ने क्या किया, विठ्ठल भगवान के विग्रह पर हमला करने का प्रयास किया, कुछ सख्त वस्तु से प्रहार करने का प्रयास किया, तो उसके बाद में फिर सब लोगों का दर्शन जो है आलिंगन देने का बंद हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु 1514 में आए थे ना, तो महाप्रभु चैतन्य ने बड़े प्रेम से उनको आलिंगन दिया और भाव विभोर होकर जो चौखाम्बी मंडप है ना, उसमें एक 16 खाम्बी मंडप है, 16 खाम्बी मंडप है, वहां पर बहुत भाव विभोर होकर उन्होंने कीर्तन किया। सब लोग देखकर पागल हो गए, इतना उन्होंने आनंद का कीर्तन किया। वो कीर्तन देखते हुए एक ब्राह्मण ने उनको अपने घर पे निमंत्रण दिया था, हमारे घर पर भोजन के लिए आई। जैसे वो मथुरा में आए थे ना, तो उन्होंने नृत्य किया मथुरा के रास्ते पर, तुरंत सनौड़िया ब्राह्मण ने उनको भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। वैसे ही इनका नृत्य देखकर तुरंत ही एक ब्राह्मण ने उनको घर में आमंत्रण दिया। उसके घर में महाप्रभु चैतन्य गए, उन्होंने वहां पर कीर्तन किया, वहां पर भोजन किया, विश्राम किया। उस घर में उनको ये पता चला कि श्री रंगपुरी जी पंडरपुर में किसी ब्राह्मण के घर में आए हुए हैं। अब ये रंगपुरी जी कौन है? ये रंगपुरी जी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु के गुरु भाई हैं। माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन कौन है? ईश्वरपुरी और रंगपुरी, बड़े बड़े महान विभूति हैं। तो रंगपुरी जी का नाम सुनते ही चैतन्य महाप्रभु भाग के उनके घर में ले जाते हैं, जहां पर वो जिस ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे। तो वहां पर जाकर रंगपुरी जी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे साक्षात। रंगपुरी जी को संकोच होता है, अरे तो परम भगवान गौरांग स्वर्ण अवतार, उनके शरण मुझे लेना चाहिए, तो मुझे दंडवत प्रणाम कर। फिर वो परिचय देते हैं कि मैं ईश्वरपुरी का शिष्य हूं और आप मेरे गुरु के गुरु भाई हो, तो मेरे गुरु समान हो, इसलिए मैं आपको वंदन करना चाहिए। फिर वंदन करते हैं और वंदन करते ही फिर रंगपुरी उनको उठाकर आलिंगन देते हैं और दोनों के शरीर में कंपन होता है, आंखों में अश्रु बहते हैं, बार बार आलिंगन देते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। फिर रंगपुरी जी उनको पूछते हैं कि आप कौन से गांव से हो? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं नवद्वीप से हूं, मेरा जन्म वहां पर हुआ है। तो तुरंत रंगपुरी को बहुत पहले साल की नवद्वीप में जब गए तब कुछ किया था, वो कहते मैं बहुत सालों के पहले मैं नवद्वीप में गया था और वहां पर एक जगन्नाथ मिश्र नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम दशी माता था, उनके घर में मैं रहा था और उनके घर में मैंने केक बनाना होता ना, केला होता है उसका फूल होता है, फूल एक वायलेट रंग का होता ना, क्या कहते हैं उसको, हॉटस्पॉट कलर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वायलेट कलर को क्या बोलते हैं, जामुन मराठी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हो जामुन रंग का एक होता है, केले का फूल होता है लंबा सा, उसके अंदर एक पत्ता निकालेंगे तो कुछ एक फूल निकलते हैं और पत्ता निकालेंगे और फूल निकलते हैं, ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं, उनकी बहुत सुंदर सब्जी बनती है। तो रंगपुरी जी याद करते हैं सच्ची माता देवी जो भोजन बनाती थी वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हुआ करता था, उसका स्वाद याद करके मेरे घर में रोमांच खड़े हो जाते। तो उन्होंने जो केले के फूल की सब्जी बनाई थी उसका स्वाद मेरे जवान पर आज भी है, ऐसे वो चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं। सब देखो आप, और फिर कहते हैं कि उनको एक बड़ा बेटा भी था, उसका नाम था विश्वरूप और वो विश्वरूप जो है वो बड़ा भक्त था भगवान का और अद्वैत आचार्य घर में बैठकर भागवत सुनता था, उसकी इतनी विरक्ति थी उसको देखकर माँ पिताजी ने उनको विवाह करने का प्लानिंग किया, तो वो सुन के तुरंत चले गए। ये सब रंगपुरी जी बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और फिर शंकरानंद स्वामी बन गए वो, और वो इस पंढरपुर में आए, यहां पर साक्षात्कार हुआ और उनका यहां पर अंतर्धाम हुए। चैतन्य महाप्रभु बताते उनको जो मेरे भाई हैं, सच्ची माता मेरी माता है और जगन्नाथ मिश्रा मेरे पिता है। कितना योगा है वह। तो जिस कार्य को बाहरी रूप से बोलकर चैतन्य महाप्रभु निकले थे वो सिद्धि यहां पर हुई। रंगपुरी जब बताया उनको कि आपके भाई यहीं पर समाधि मतलब अंतर्धान हुए, तो इस तरह से ये इसका वार्तालाप होता है। और एक सेकेंड रुकिए, वार्तालाप होने के पश्चात रंगपुरी जो है वो चले जाते हैं वहां से। और उसके बाद में 5 दिन तक चैतन्य महाप्रभु और रहते हैं, और ऐसे लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु भागवत में लिखा गया है, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी किया गया है, चैतन्य मंगल में किया गया है, और भी चैतन्य एक और ग्रंथ है तो उसमें लिखा गया है कि वो 11 दिन पंढरपुर में रहे और 11 दिन के बाद में फिर वहां से वो कोल्हापुर चले गए। इससे पहले द्वारका चले गए रंगपुरी जी, और चैतन्य महाप्रभु उसी ब्राह्मण के घर में और 4 दिन रहे। उन्होंने रोज चंद्रभागा में स्नान किया और विट्ठल का दर्शन लिया, कुल 11 दिन रहे। और उसके बाद में वो वहां से आगे चले गए, पंढरपुर के आगे कोल्हापुर चले गए, लक्ष्मी का दर्शन किया उन्होंने, वहां पर बहुत सुंदर कीर्तन किया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का ये जो पंढरपुर का भेद है उसका विवरण समाप्त हुआ। तो हमारे लिए बहुत जरूरी ये है कि पंढरपुर के धाम में अनंत कथाएं हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी और चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण भगवान का कलयुग अवतार, दोनों ने भी पंढरपुर में भेद किया है, यहाँ विजिटेड और सुंदर लीला किया है। उनके चरण कमल से कि भूमि पावन हो गई, इसलिए हमने जब सुबह बताया था आपको कि विट्ठल भगवान का तो यहाँ पर तो अस्तित्व है ही, लेकिन साथ साथ अलग अलग रूप में भगवान भी यहाँ प्रकट हुए, भगवान के अनंत भक्त जो है वो यहाँ प्रकट हुए हैं, उन्होंने भी लीला किया है और पंढरपुर क्षेत्र को बड़ा दिव्य बना दिया है। इसलिए हमारा यहाँ पर आने का जो प्रयोजन है वो उसी परंपरा का कंटिन्यूएशन है, तो हमारा पंढरपुर में संपर्क कैसे होता, उसी भावना से सब भक्तों के यहां पर आते हैं। और यही चैतन्य महाप्रभु जो गौ लीला है वो गौ लीला चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान होने पर समाप्त नहीं होती, गौ लीला इटरनल। जहां पर कीर्तन का प्रचार होता है वही गौ लीला है, तो गौ लीला जो है वो गौरा महाप्रभु जाने के बाद चालू है। भक्ति विनोद ठाकुर और पीछे बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती, फिर श्री प्रभुपाद जी का दिव्य बृहद मृदंग जो उन्होंने विश्व भर में गौ लीला का प्रचार किया, और उनके बाद में फिर उनके अनंत शिष्यगण जो है इंद्रदन महाराज है, लोकनाथ जी महाराज हैं, गिरिराज महाराज हैं, बीबी गोविंद महाराज हैं, और भक्ति कृत स्वामी महाराज है, कुमार कृष्ण महाराज है, उन्होंने सभी अनंत लोगों ने विश्व भर में इस गौ लीला का प्रचार किया। जो कीर्तन रस का प्रचार होता है वही गौ लीला है, और आज हम लोग भी इस गौ लीला के सहभागी हैं, वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स ऑफ गौ लीला। इस प्रकार से क्योंकि इस आंदोलन से आज भी गौरांग महाप्रभु ने जो प्रचार किया था वो हरिनाम संकीर्तन, आज भी उसका प्रचार हो रहा है, भले मेडिकल सेवा के माध्यम से हो रहा है, जो उन्होंने प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू किया था वो दिव्य मात्रा में यहाँ पर हो रहा है, जो दिव्य ग्रंथ है उनका वितरण हो रहा है, तो साथ साथ में दर्दी लोगों का दर्द का निवारण भी हो रहा है, तो ये गौ लीला है। 10,000 साल तक प्रभुपाद जी ने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु के जाने के पश्चात 10,000 साल स्वर्ण युग के रूप में कहा जाएगा, गोल्डन एज ऑफ कलयुग। और 10,000 साल में कली का परिणाम उतना नहीं होगा जितना एक्चुअली होना चाहिए, जितना हो सकता है। और इस 10,000 साल में जो भी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सहभाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, हरिनाम को स्वीकार करेगा, वो अपने जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्ति करेगा। और 10,000 साल के बाद में घोर कलयुग आएगा, और घोर कलयुग में पेड़ पर फल नहीं आएंगे, जमीन से धान नहीं उगेगा, आकाश के बादल से वर्षा नहीं होगी। इस सारी भयंकर अवस्था होगी, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते, बहुत भयंकर अवस्था होगी। माता अपने बालक को जन्म देगी, मनुष्य स्त्री, हाँ ह्यूमन लेडी, मनुष्य माता अपने बालक को जन्म देगी केवल खाने के लिए, क्योंकि अन्न कहीं भी नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगेंगे। मैं सो गया तो आप मुझे खा जाएंगे, तो लोग नींद भी अच्छी तरह नहीं ले पाएंगे, मतलब कोई आक्रमण करेगा उसका ठिकाना नहीं है। आप लोग हंस रहे हैं अभी, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितनी भयंकर अवस्था है। जब मुझे सोना है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं भी खाना नहीं है तो लोग अभी वेट कर रहे हैं, जब विष्णुदास अभी सो जाएंगे तभी उनको मार सकते हो, तो खा सकते हो। और सब लोग ये सोचते रहेंगे मेरा भी डर आएगा, आज मैं इनको मार के खा रहा हूँ, मुझे भी कुछ मार के खाया जाएगा। ऐसी भयंकर अवस्था में लोग जीवन बिताएंगे, और जो बचे बुचे भक्त होंगे वो डर के मारे भाग के गुफाओं में छुप छुप कर भजन किया करेंगे। ऐसे कलयुग का वर्णन किया, सबके पेट में कॉमन रूप के अंदर, एकदम कॉमन अनंत मूत्र खड़े होंगे, किडनी स्टोन्स। क्यों होंगे? क्योंकि पीने को पानी नहीं मिलेगा, आकाश से जब वर्षा नहीं होगी तो पानी कहाँ मिलेगा, सब जो पानी जमीन के अंदर है कुएं के रूप में सब खत्म हो जाएगा। फिर एक आदमी को एक दिन में एक ग्लास पानी मिलेगा, उसमें ही मुंह धोना है, उसमें ही पानी पीना है, सब कुछ उसमें करना है, स्नान करने को पानी नहीं मिलेगा, सब लोग गंदे रहेंगे, बदबूदार रहेंगे, पेट में अनंत बीमारियां रहेंगी क्योंकि पानी नहीं रहेगा, भोजन नहीं मिलेगा, सब समाप्त हो जाएगा सब भोजन। तो जितने जीव जीवंत है, सर्प है, मछली है, हाँ कीटक है, जो जीव मिलता है वो जीव को आदमी लोग खाएंगे, उसके बाद में मनुष्य को खाना आरंभ करेंगे। ये सब वर्णन मैं भी आषाढ़ महीने के सुंदर तिथि में बैठना शुरू कर रहा हूँ। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि अगर हम अभी नहीं जगेंगे तो वो दिन हमको देखने पड़ेंगे, आज जगेंगे तो वो दिन आने के पहले हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आज आपको इस भाग्यवान घड़ी में, हाँ मैं आपको बैठकर आराम से कथा कर रहा हूँ, उस समय मैं आराम से बैठकर कथा नहीं कर पाऊंगा, लोग खाली देखते रहेंगे अच्छा मोटा हट्टा कट्टा आदमी है इसको खाया जाए, ये देखते रहेंगे बस, और कुछ सोचेंगे नहीं। आज बोलेंगे अच्छी कथा कर रहा है, मजा आ रहा है सुनने, ऐसे बोलेंगे। उस समय बोलेंगे अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है, खाने में टेस्ट लगेगा, देखो कितना फर्क हो जाएगा, समय समय का प्रभाव है। आज अगर हम महाप्रभु चैतन्य के इस दिव्य आंदोलन में अपने आप को 100% सहभागी करेंगे, शरणागति करके अपने आप को समर्पित करेंगे, तो इसी जीवन के अंत में भगवत धाम में पहुंचेंगे। इतनी सुविधा आज उपलब्ध है, बढ़िया प्रसाद खाने को मिल रहा है, बढ़िया सेवा करने को मिल रही है, दर्शन करने को मिल रहा है, नदी में स्नान करने को मिल रहा है। अरे नदी बचेगी नहीं तो स्नान क्या करेंगे आप? आज भी केवल 500 साल हो गए, 5,000 साल हो गए, केवल 5,000, ओनली 5,000, 4,32,000 साल का कलयुग होता है, केवल 5,000 साल हो गए। और जमुना जी की हालत देखो क्या हो रही है, गंगा जी की हालत देखो क्या हो रही है, चंद्रभागा की हालत देखो क्या हो रही है, कहीं भी जाओ यही स्थिति है, दिव्य स्थान लुप्त होते जा रहे हैं। आज आप देख रहे हो आपके बच्चों को देखने को नहीं मिलेगा, जो जवान लोग देख रहे हैं, आप लोग जवान हो, विवाह शादी आपकी होनी है, कि पत्नी आएंगी, आपको बच्चे होंगे, जो बड़े हो जाएंगे आप लेके आएंगे तो बोलेंगे यहाँ पर चंद्रभागा बहा करती थी, ऐसे बताएंगे, यहाँ पर गंगा गुजरती थी, यहाँ पर जमुना जी गुजरती थी, यहाँ पर ये स्थान हुआ करता था। जैसे आप, मैं आपको आज कई कथाएं मैंने आपको बताई, उस पर उसके कई स्थान आज नहीं है, किताबें भी लिखा है ये स्थान होते पहले थे, अभी दर्शन नहीं हुआ उनका स्थान। कुछ स्थान ऐसे हैं जो हमने दर्शन किए हैं लेकिन 25 साल के बाद में आज वो दर्शन नहीं हो रहा है, उनका अवेलेबल नहीं है, ये आज की अवस्था है। और वो 10,000 साल का जो वर्णन हम कर रहे हैं
वो 10,000 में से केवल 525 साल गुजर चुके हैं। वो 10,000 सबकी गिनती जो है वो चैतन्य महाप्रभु के जन्म से शुरू होती है, 1486 प्लस 10,000 मतलब कितने होते हैं बोलो ना। यस 1486 प्लस 10,000 कितने होते हैं 11,486 इंटू और 100 आएगा उसमें है ना, इज दैट राइट? ठीक है कोई बात नहीं। तो वो साल जब आएगा तब ये 10,000 साल खत्म हो जाएंगे, तो उसमें से आज केवल 525 साल हो गए, ज्यादा साल नहीं हो। तो ये अवस्था है, इतना करप्शन बाहर है, लोगों को जीना हराम हो गया, इतना पोल्यूशन बढ़ गया है, कितना लोग दुष्ट हो गए, समाज में जीना मुश्किल हो गया, औरत को शाम को अंधेरा होने के बाद घर निकल बाहर निकलना मुश्किल हो गया, इतना आतंक यहां पर है। पश्चिम देश के अंदर शाम के बाद में तो लोगों को रोड पर लूटते हैं, गोली से सर पर प्रहार करते हैं, ये आज की अवस्था है। तो 10,000 साल को भूल जाओ आप, आज से 20 साल के बाद में भी इतनी भयंकर अवस्था होगी, तो क्या हम लोग इस जन्म को होने के बाद में दोबारा जन्म लेना चाहेंगे क्या? एनीबडी इज हियर वांट टू रेज हैंड्स, आपको इस जन्म के बाद दोबारा एक बार आना है? तो नाम पूरा नहीं हुआ है, 2-4 जन्म में पूरा कर देंगे, क्या इतनी बड़ी बात है? 10,000 का होता है ना आपको, लेकिन बुद्धिमान होकर पूछेगा कि आज केवल 125 साल वर्ष के बाद में इतनी भयंकर अवस्था है दुनिया में। अरे पंडरपुर के अंदर चिकन सेंटर ऑमलेट स्टॉल लगा हुआ है, मथुरा में जो गाय का जो भूमि है लोक है वहां पर, जहां पर गाय का पूजा की जाती है, मथुरा में भगवान का प्रिय प्राणी गाय जो है वो वंदनीय है, वहां पर कत्तल खाना गाय का बना हुआ है, मथुरा में 5 कत्तल खाने हैं। सोचो आप मुसलमान लोग वहां पर दिन दहाड़े रात को दिन में गाय को रस्ते पे से उठा के ले जाते हैं चोरी करके बंदूक दिखाकर और काट देते हैं। इतनी भयंकर अवस्था आज है, तो हमको लगता है कि अभी और हमको यहां पर अगर 20 साल जीना है तो 20 साल जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, कितनी और भयंकर अवस्था आएगी सोचो आप। तो मैं कई बार सोचता हूं अगर मेरा जीवन समझो 75 साल का है, मुझे और कितने साल जीना पड़ेगा, कितना साल यहां पर करप्शन देखना पड़ेगा, आज इतना प्रचार आसान है तो कितना प्रचार मुश्किल हो जाएगा। हाँ इतने विकृति लोगों के मन में आ गई है, एक एक आदमी 50-50 शादियां करता है, 50-50 डिवोर्स देता है, और आदमी आदमी का संभोग करता है, होते औरतों का संभोग करती है, पश्चिम जगत में आदमी आदमी का विवाह होता है, वसीयतनामा होता है, उनका सब कुछ होता है, इतना जानवर का जीवन बिता रहे लोग। आज की स्थिति है ड्रग्स लेते हैं, रसायन लेते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो आज की स्थिति में ये स्थिति है, तो 525 साल छोड़ दिए आपने, तो 19,475 साल जो है वो कितने मुश्किल होंगे। तो ये सभी कड़वी कथा करने का उद्देश्य क्या है? हमको अभी जगना है, आज की तारीख अभी बहुत सुंदर रूप से धाम वास हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं, भगवान के प्रसाद मिल रहा है, हरिनाम सुनाई पड़ रहा है, भगवान के टाड़ मृदंग जो है कान पर पड़ रहे हैं, ये जगने का समय है। हाँ मग्न होने का समय नहीं, जगने का समय है, अभी हमको जगना है और भगवान के हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना है। ये बोला है कि मैं एक माला करती हूँ, एक माला करता हूँ, दो माला करने का विचार है मेरा। ऐसे करेंगे तो यही रहेंगे स्लो गाड़ी में, खटारा गाड़ी में यही बैठेंगे और जन्म जन्मांतर तक आते रहेंगे यहां पर, और ना भोग मिलेगा ना अध्यात्म मिलेगा। भोग के लिए आते रहेंगे, भोग समाप्त हो जाएगा, भोग नहीं मिलेगा। तो आज भक्ति को अपनाएंगे, भक्ति को स्वीकार करेंगे, तो इसी जीवन में हम भगवान ने वादा किया चैतन्य महाप्रभु ने, अगर दिल से हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आज सहभागी होंगे तो इसी जन्म के अंत में हमको महाप्रभु अपने धाम में लेके जाएंगे। और हम सबको निश्चय करना है कि हमको इसी जन्म के अंत में भगवान के पास जाना है, 2-4 जन्म में काम पूरा करने का प्लान नहीं करना है हमको। बहुत लोग सोचते हैं इतने नम्र हैं, बोलते हैं प्रभु हम तो इतने पतित हैं, ये जन्म में अपना काम नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। ये नम्रता नहीं है, कायरता है, भगवान पर अविश्वास है ऐसे कहना। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप समर्पित हो जाओ, आपकी तरफ से मेरा काम मैं करता हूं, आप अपना काम करो। बोले हम इतने पति नहीं, क्या करेंगे, इतने पति नहीं, हमको तो भगवान भी साथ दे सकते। अरे ऐसा कोई पाप नहीं जिसको भगवान नष्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई पापी व्यक्ति नहीं जिसका उद्धार भगवान नहीं कर सकते। हमारा काम अपने आप को समर्पित करने का है और वो आपके हाथ में है। नहीं मैं तो इतना पति हूं, मैं समर्पित नहीं हो सकता, ऐसे बोलना मतलब एकदम अहंकार की बात है। हम ना सबसे पतित हैं, ना सबसे प्रगत हैं, हम कुछ भी नहीं है। Neither we are too fallen, nor we are too advanced. We are nothing actually. We are very insignificant. अगर भयंकर हम पतित होते तो हमको मारने के लिए नरसिंह भगवान आते, जैसे रंद्रेश को मारने को आए, है ना। कोई इतना इतना पति इतना भयंकर अक्षस था वो कि भगवान के बिना और उसको कोई मार सकता, मार सकता नहीं था, तो भगवान को खुद आना पड़ा उसको मारने के। और रावण इतना पतित था तो राम को आना पड़ा। नौ बजे का बस को जिसको जाना है वो जा सकते, मैं दो मिनट में कथा खत्म करूंगा। तो कहने का तात्पर्य है जाने के पहले बस पकड़ने के पहले सोच लेना कि आपको किसी जगत में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में समर्पित करना है। आप समर्पित हो जाओ, बाकी सब भगवान में छोड़ दो, वो उनका काम करेंगे, वो बहुत अच्छी तरह अपना काम करेंगे, हम नहीं करते अपना काम अच्छी तरह से। तो क्या करना है आपको,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
इस महामंत्र को और गंभीरता से और समर्पित भावना से और गहराई में और हृदय से हमको जप करना है, कीर्तन करना है, हरे नाम में अपने जीवन को अपनी सांस को अर्पण कर देना है। तब जाकर हमारी पंढरपुर की सेवा भी धन्य है, हमारा भक्त बनना भी धन्य है, हमारा जन्म भी धन्य है, हमारा मृत्यु भी धन्य हो जाएगा। यही अपने लिए संदेश है यहाँ पर। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।